आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद कृषि और ग्रामीण परिवर्तन वेबिनार को किया संबोधित। रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर ध्यान देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 50 दोपहिया क्विक रिस्पांस टीमों को दिखाई हरी झंडी। कहा, जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है सरकार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस। डीजीसीए ने जारी किया एयरोड्रोम लाइसेंस। उड़ानों की शुरुआत का रास्ता हुआ साफ। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम किया घोषित। अनुज अग्निहोत्री ने हासिल की पहली रैंक। शामली की आस्था जैन को मिला 9वां स्थान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं।
कृषि, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च मूल्य कृषि उत्पाद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 50 दोपहिया QRT क्विक रिस्पांस टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 50 दोपहिया वाहन उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में शामिल हुए हैं। इन वाहनों का उपयोग बॉर्डर जनपदों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपातकालीन स्थिति या अपराध होने पर पुलिस की तरफ से तत्काल कार्रवाई के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा विकास की कड़ी है। सरकार जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश को लेकर परसेप्शन बदला है।
एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। आज का इस समारोह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का जो चेंज हुआ है, इसके लिए कुछ कदम बढ़ाए गए थे, कुछ रिफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन बगैर रिफॉर्म के नहीं हो सकते।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर नगर के नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार की समन्वय बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति, जनसंपर्क अभियान और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि समन्वय बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति को लेकर भी चर्चा की गई।
तमाम समविचारी संगठन जो एक विचार के लिए काम करते हैं, समय समय पर बैठते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। उसी क्रम में सब लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रगति के बारे में, कोई कठिनाइयां हैं उन सबके विषय में एक समन्वय बैठक थी, जिसमें सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के प्रगति और अपने अपने विषयों की जानकारी दी।
प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर परियोजना को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस मिल गया है। साथ ही डीजीसीए ने एयरोड्रम लाइसेंस भी जारी कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यीडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन शुरू होने से पहले सुरक्षा मानकों का परीक्षण अनिवार्य होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब DGCA से एरोड्रम लाइसेंस मिल गया है, जिसके बाद यहां से फ्लाइट ऑपरेशंस जल्द शुरू किए जा सकेंगे।
प्रदेश सरकार ने इस एयरपोर्ट को राज्य के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया है। यह एयरपोर्ट न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए एक महत्वपूर्ण एविएशन हब के रूप में उभर रहा है। सरकार का मानना है कि इसके शुरू होने से प्रदेश में निवेश, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज जनभवन में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अधिकारियों के नेतृत्व में कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों के 21 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की और संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभवों और विभिन्न नवाचारों को साझा किया। इस अवसर पर ADG PIB गुवाहाटी कृपा शंकर यादव, निदेशक PIB लखनऊ दिलीप कुमार शुक्ला सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकार उपस्थित रहे। सिविल सेवा परीक्षा CSE 2025 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सुए ने दूसरा और आकांश ढुल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। शामली जिले की आस्था जैन ने 9वां स्थान हासिल किया है। आस्था की माँ ममता ने इस पर खुशी जताई।
बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी गुड़िया का सपना था बचपन से ही DM बनने का, और उसने 3 साल लगातार प्रयास किया। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो IPS आई थी, 131 रैंक आई उसकी, और सेकंड में 181 रैंक आई है, और अब 9वीं रैंक लाकर तो उसने बहुत ही अच्छा हमारा माहौल बहुत अच्छा कर दिया यहाँ।
अम्बेडकर नगर के पुरु दुबे को 86वीं रैंक, कुशीनगर के पवन कुमार पांडे को 138वीं, गौतम बुद्ध नगर की मुस्कान वर्मा को 771वीं, अम्बेडकर नगर के विपिन यादव को 316वीं रैंक मिली है। 25 मई 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 930,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज वाराणसी में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभागीय कार्य मॉडल वर्क और टीम भावना के साथ किए जाएं, ताकि विकास कार्यों में गति, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार राज्य के राजकीय पक्षी सारस के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट की स्थापना करेगी। सारस सर्किट का विकास प्रदेश के मैनपुरी और इटावा जिलों के वेटलैंड्स में किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
सारस सर्किट परियोजनाओं का विकास इको टूरिज्म विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदेश का वन विभाग कर रहा है। इसका उद्देश्य सारस पक्षी और वेटलैंड्स संरक्षण के साथ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र, इको टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, इंटरैक्टिव साइनेज, फूड कियोस्क और ODOP व स्मृति चिन्ह की दुकानें भी विकसित की जाएंगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर इंडिगो एयरलाइन ने पश्चिम एशिया और इस्तांबुल से आने जाने वाली उड़ानों की टिकट रद्द कराने पर मिलने वाली पूरी छूट 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया कि एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यदि उनकी यात्रा निर्धारित है तो वे उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। साथ ही अतिरिक्त सहायता या स्पष्टीकरण के लिए यात्री ग्राहक संपर्क केंद्र के नंबर +91 124 617 3838 पर कॉल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी लखनऊ ने आज एक विशेष कार्यक्रम शक्ति रूपेण संस्थिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में नारी शक्ति के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने वाले 3 सत्रों का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ की अध्यक्ष डॉक्टर कुमकुम धर ने किया। इस अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ के केंद्राध्यक्ष RB सिंह, कार्यक्रम प्रमुख सुमोना पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद कृषि और ग्रामीण परिवर्तन वेबिनार को किया संबोधित। रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर ध्यान देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 50 दोपहिया क्विक रिस्पांस टीमों को दिखाई हरी झंडी, कहा जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है सरकार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस, डीजीसीए ने भी जारी किया एरोड्रम लाइसेंस, उड़ानों की शुरुआत का रास्ता हुआ साफ और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम किया घोषित, अनुज अग्निहोत्री ने हासिल की पहली रैंक, शामली की आस्था जैन को मिला 9वां स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।